आप हैं SBS हिंदी के साथ।
ऑस्ट्रेलिया में निवेशकों और बड़ी कंपनियों के लिए 2019 एक बड़ा साल रहा। दुनिया में आर्थिक तनाव और मंदी की खबरों के बीच देश के शेयर बाजार ने नई ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी देश के बैंकों ने। 2019 का वित्तीय हाल पेश कर रहे हैं हमारे फाइनेंस एडिटर रिकार्डो गोंसाल्विस। आवाज विवेक आसरी की है। बैंकों के दुर्व्यवहार पर रॉयल कमीशन, सुपर एन्यूएशन और वित्तीय सेवा उद्योग को हिला देने वाली खबरों ने सिर्फ सुर्खियां ही नहीं हिलाईं, कुर्सियां भी हिलाईं। कॉमनवेल्थ बैंक, AMP, NAB और IOOF होल्डिंग्स के प्रमुखों को जाना पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रहा वेस्टपैक का। मनी लॉन्ड्रिंग के कानूनों के उल्लंघन के 23 मिलियन मामलों के कारण अध्यक्ष लिंजी मैक्सटेड का इस्तीफा हुआ और CEO ब्रायन हार्ट्जर को हटना पड़ा। लिंकन इंडिकेटर्स के विश्लेषक एलियो डे अमाटो कहते हैं कि ये मामला बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट फाइन भी देखने को मिल सकता है।
It's going to be remembered in the annals as really a catastrophic event when it came to breakdown in process and governance. And the lessons that will be learned from this particular event will permeate through many corporate boardrooms for quite some time yet.
ट्राइबेका इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स में विश्लेषक जुनबेई लू के मुताबिक इस कारण शेयर धारक काफी गुस्से में हैं।
When breaches like that to get uncovered, it's certainly causing the question about how much money these executives and the board get paid, and how much of their duty have they executed, to you know how much oversight did they really have with you know compliance and other issues. So certainly it's a big issue now and big focus for the shareholder groups.
वेस्टपैक के शेयरधारकों ने इस महीने हुई बैठक में एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया था। एलियो डे अमाटो कहते हैं कि फेडरल इलेक्शन में भी निवेशकों की ताकत देखने को मिली थी।
The proposed changes to remove the cash refund on franking credits was not actually grandfathered. Therefore, investors who over the many years had planned their investment strategy around receiving franking credits as a means of income to help be a self-funded retiree moving forward, they were going to have that pulled from under them. And that really raised the ire of many older voters.
डे अमाटो इस और भी ध्यान दिलाते हैं कि इसी नीति के कारण लेबर पार्टी की हार हुई।
If lessons can be learned from a political perspective, changing the rules, as it were, for those that had previously been playing under other rules, is a real high-risk venture. And so, rather than the policy itself being bad, it was more the fact that it was going to affect those that possibly were under no impression that that was ever going to change in their lifetime.
ट्राइबेका की जुनबेई लू कहती हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा खतरा अंतर्राष्ट्रीय कारणों से हुआ, खासतौर पर चीन और अमेरिका के बीच जारी व्यापारिक तनाव ने काफी तनाव बढ़ाया।
It was the start of the escalation in trade war because it was a very trade sensitive deal when US banned Huawei and China took offense. And if you remember, that's when the tariff started escalating from the US side.
ये तनाव इतना ज्यादा है कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। डेमाटो कहते हैं कि सामान्य वृद्धि हासिल करना भी मुश्किल हो सकता है।
There is not much in way of inflation across the board, so therefore, in order to be able to achieve growth, many companies will be looking to acquire that growth through the purchase of other businesses.
और इसका नतीजा ये हो सकता है कि अगले साल यानी 2020 में बड़े पैमाने पर अधिग्रहण और विलय देखने को मिल सकते हैं।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।